आयु किचन में थी। जैसा कि उसे आरव ने कहा था, उसे गौरवी जी का ध्यान भटकाना था ताकि वो आरव के बारे में ना पूछे। आयु उनके साथ कुकिंग कर रही थी और आरव के दिए काम को वो अच्छी तरह से पूरा कर रही थी। आयु अपने गर्दन पर बने निशान को गौरवी जी हाइड करने की कोशिश कर रही थी। आयु अपनी उधेड़ बुन में खोई थी तभी गौरवी जी ने वहां ड्रॉर में से एक रबर बैंड निकाला और आयु के बालों में डालने लगी। आयु के बाल बांधने के बाद गौरवी जी उसके सामने आई और उनकी नज़र आयु के गर्दन पर हिकी के मार्क पर गई और वो उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी, जबकि आयु एम्बैरस होकर इधर उधर देख रही थी। आयु ने अपने आंखों में हाथ रखकर कहा, दादी प्लीज मत कीजिए ना, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वो आरव, उसने ये जानबूझकर, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। आयु को अब आरव पर गुस्सा आने लगा था। गौरवी ने उसके चेहरे पर से हाथ हटाते हुए कहा, रिलैक्स मिसेस खुराना, मुझसे इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना फ्रेंड ही समझो। आयु ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तभी आप मुझे परेशान कर रही हैं, आप मुझे छोड़कर कुकिंग पर कॉन्सेंट्रेट करिए ना। अच्छा ठीक है, अब से कुछ नहीं कहूंगी, गौरवी जी ने जवाब दिया और फिर से हंस पड़ी। अब आयु को भी उनके साथ हंसी आ रही थी। आयु और गौरवी जी साथ में बातें करते हुए खाना बना रही थीं। ब्रेकफास्ट तैयार करने के बाद वो दोनों बाहर आई ही थीं कि उन्होंने देखा मिस्टर और मिसेज ओबेरॉय खुराना मैंशन आए थे। आयु को देखते ही ताराजी उसके गले लग गईं। ताराजी ने नम आंखों से कहा, तुम ठीक हो ना, मैं बहुत डर गई थी। बोलते हुए वो आयु से अलग हुई और कहा, आरव कहाँ है, उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए और वो यहाँ से गायब है। गौरवी जी कन्फ्यूजन से उन दोनों को देख रही थीं। उन्होंने आयु की तरफ देखकर कहा, आरव कहाँ से इनका मतलब? आरव ऊपर तुम्हारे साथ रूम में था ना और अब तक सो रहा है, तुमने मुझसे यही कहा था और ये कुछ और कह रहे हैं, कुछ हुआ है क्या आयु? उनकी बातों से जय जी और तारा जी समझ गए थे कि कल रात के हादसे के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है। जय जी ने बात को संभालते हुए कहा, एक्चुअली कल रात ये जब घर आ रहे थे तो मैंने देखा कि इनका एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता, लेकिन ये दोनों स्मार्टली वहां से निकल गए थे। मुझे लगा उसके बाद आयु डर गई होगी और इस वक्त आरव को आयु के साथ होना चाहिए था। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डैड हमें कुछ नहीं हुआ, हम दोनों ठीक हैं, आरव ऊपर रेस्ट कर रहा है, आयु ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। इस वक्त उसे आरव पर गुस्सा भी आ रहा था और साथ ही आरव की कमी भी महसूस हो रही थी। जिस हिसाब से गौरवी जी सवाल पूछ रही थीं, उससे साफ था कि वो ज्यादा देर तक उन्हें संभाल नहीं पाएंगी। गौरवी जी आयु के पास आईं और उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, अगर अभी भी कुछ और भी छुपा रहे हो तो बता दो। आयु को समझ नहीं आ रहा था कि वो गौरवी जी की बात का क्या जवाब दे। उसने जय जी और तारा जी की तरफ देखा तो उन्होंने उसे चुप रहने का इशारा किया। तारा जी ने मामले को संभालते हुए कहा, हमारे यहाँ आने से परेशान मत होइए आंटी, वैसे भी हम आयु से मिलकर चले जाएंगे, इसकी याद आ रही थी तो चले आए, कल रात जो एक्सीडेंट होते हुए बच गया उससे भी थोड़ा डर गए थे। उनकी बातों में छुपी नाराजगी गौरवी जी अच्छे से समझ पा रही थीं। उन्होंने आरव को बहुत समझाया था लेकिन फिर भी उसने ओबेरॉय फैमिली को रिसेप्शन पार्टी के लिए इन्वाइट नहीं किया। गौरवी जी ने तारा जी की तरफ देखकर कहा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो तारा, ये तुम्हारी ही बेटी है और शादी के बाद तुमसे अलग नहीं हुई है, तुम जब चाहो तब इसे मिलने आ सकती हो या इसे अपने पास बुला लेना। अगर ऐसा होता तो कल इसी की शादी के फंक्शन से हमें अलग नहीं किया जाता आंटी, क्या हमारा इतना भी हक नहीं बनता कि हम अपनी बेटी के रिसेप्शन पार्टी में आएं? आपने तो इसे पगफेरे की रस्म के लिए भी नहीं भेजा, जरूर आरव ने ही मना किया होगा, जय जी ने तारा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। उन्होंने गौरवी जी का ध्यान तो भटका दिया था लेकिन साथ ही अपने दिल की नाराजगी भी उनके सामने जाहिर कर दी थी। बात अब आरव और आयु से हटकर तारा जी और जय जी की नाराजगी पर आ गई थी। उनके बीच कोई बड़ा आर्ग्यूमेंट ना हो जाए ये सोचकर आयु परेशान होने लगी। गौरवी जी की बात का कोई जवाब देती उससे पहले आरव वहां पहुंच गया था। उसने पीछे से कहा, हाँ मैंने ही मना किया था क्योंकि शादी के फंक्शंस के टाइम मैंने फील किया कि आप आयु को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं, जब आप ही उसे देखना नहीं चाहते तो आपका उससे दूर रहना ही ठीक है। आरव को बाहर से आता देखकर गौरवी जी ने कन्फ्यूजन से कहा, तुम तो ऊपर सो रहे हो ना, अब बाहर से कैसे आ रहे हो? वो सब बाद में समझाऊंगा, पहले आप मेरे इन लॉज की नाराजगी दूर कीजिए और मुझे मेरी मिसेस खुराना से बात करने दीजिए, आरव ने सिर हिलाकर जवाब दिया। तारा आयु के आगे खड़ी थी इसलिए वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। तारा को साइड करके आरव जल्दी से आयु के पास आया और सबके सामने उसे गले लगा लिया। उस लम्हे में आरव भूल गया था कि बाकी लोग भी उसके आसपास हैं। उसे बस ये याद आ रहा था कि अपने गुस्से में उसने आयु के साथ क्या कुछ नहीं किया था। उनकी शादी की पहली रात नशे में आरव ने उसके साथ कितनी बदसुलूकी की थी। जब मंथन पेपर्स लेकर आया था तो उसने आरव आयु को सुनसान सड़क पर छोड़ दिया था। अगर वो सही टाइम पर वहां नहीं पहुंचता तो आयु के साथ काफी कुछ हो सकता था। आरव की आंखें नम होने लगी थीं और एक एक करके वो सारी बातें उसकी आंखों के सामने घूम रही थीं। उसने आयु को काफी कस के गले लगा रखा था कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। आयु ने आरव के कान में धीरे से कहा, क्या कर रहे हो, सब हमें ही देख रहे हैं और छोड़ो मुझे, वरना दम घुटने से मेरी जान चली जाएगी। तुम तो क्लॉस्ट्रोफोबिक हो ना, फिर सांस कैसे ले पा रहे हो? बोलते हुए आयु ने अपना हाथ आरव के हाथ पर मारने के लिए बढ़ाया। आयु ने आरव के हाथ को वहां छुआ जहां उसके गोली लगी थी। आरव को दर्द हो रहा था लेकिन फिर भी उसने उफ तक नहीं की, तो वहीं आयु को वहां छूते ही कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने अपना हाथ साइड किया तो उस पर खून लगा हुआ था। आयु कुछ रिएक्ट करती उससे पहले आरव ने उसके कान में धीरे से कहा, रिएक्ट मत करना वरना सब घबरा जाएंगे, गोली बस छू कर निकली है। तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हें गोली लगी और तुम हॉस्पिटल जाने के बजाय मेरे पास आए हो, आयु ने हैरानी से कहा। हाँ, क्योंकि मेरी डॉक्टर तो तुम ही हो, आरव ने मुस्कुराकर धीमी आवाज में जवाब दिया और फिर आयु से अलग हो गया। आरव से अलग होते ही आयु ने देखा कि सब इधर उधर देख रहे थे। इस वक्त आयु को अपनी एम्बैरेसमेंट से ज्यादा आरव की चोट दिखाई दे रही थी। उसने उन सब से कहा, आप सब ब्रेकफास्ट कीजिए, मुझे आरव से अकेले में बात करनी है। आयु इतनी जल्दबाजी में थी कि उसने किसी के जवाब का भी इंतजार नहीं किया। उसने आरव का हाथ पकड़ा और उसे अपने रूम में ले जाने लगी। वहीं रास्ते में सीढ़ियों में कबीर खड़ा था। आयु ने उसके पास जाकर धीरे से कहा, तुम इसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जा सकते थे क्या? ये जिद्दी है, किसी की नहीं सुनते, इतने टाइम में आपको ये समझ आ गया होगा, कबीर ने सिर हिलाकर कहा। आयु ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और आरव को सीधे अपने रूम में ले गई। अंदर आते ही आयु ने रूम का दरवाजा बंद किया और जल्दी से आरव का ब्लेजर निकाला। वो उसके शर्ट के बटन खोल रही थी। आरव ने लाइट पिंक कलर का शर्ट पहन रखा था जिस पर खून का बड़ा सा धब्बा बन गया था। आयु को इस वक्त आरव पर बहुत गुस्सा आ रहा था।
वहीं आरव बिल्कुल शांति से उसका काम करते हुए देख रहा था। आरव ने आयु को परेशान करते हुए कहा, क्या बात है, तुम्हारे हाथ तो बहुत तेजी से चल रहे हैं, क्या करने का इरादा है मिसेस खुराना? बाकी कपड़े भी तुम निकाल दोगी या मैं? शट अप आरव, जस्ट शट अप, आयु ने उसकी बात बीच में काट कर कहा। फिलहाल तो मन कर रहा है तुम्हारे गाल पर एक कसकर थप्पड़ लगाऊं ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि ऐसी सिचुएशन में हॉस्पिटल जाते हैं, ना कि किसी के पास आकर उसे कसकर हक किया जाता है, आयु ने गुस्से में जवाब दिया। उसने आरव की शर्ट निकाल दी और उसे बेड पर बैठाते हुए कहा, अब तुम बिल्कुल चुप करके बैठोगे, अगर मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब किया तो अच्छा नहीं होगा। आरव ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाया। आयु फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई। उसने कुछ इंजेक्शंस भी रेडी किए। सबसे पहले आयु ने आरव को इंजेक्शन दिया ताकि उसे दर्द महसूस ना हो, फिर वो उसका घाव साफ करने लगी। उसकी चोट साफ करते हुए आयु ने महसूस किया कि सच में गोली सिर्फ हल्का सा छू कर निकली है, चोट ज्यादा बड़ी नहीं थी। उसने आरव से कहा, थैंक गॉड ज्यादा नहीं लगी। हाँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि खुद को किस हद तक चोट पहुंचानी है कि मेरा काम भी बन जाए और मुझे ज्यादा दर्द भी फील ना करना पड़े, आरव ने सिर हिलाकर कहा। क्या तुमने खुद को गोली मारी है? तुम पागल हो क्या आरव? आयु ने हैरानी से आंखें बड़ी करते हुए कहा। वो आरव को बैंडेज कर रही थी पर अचानक ही उसके हाथ रुक गए। आयु आरव की तरफ देख रही थी। आरव ने एक हाथ से आयु को पकड़कर अपने करीब कर लिया। आरव ने आयु की आंखों में देखकर कहा, हाँ हूँ मैं पागल, तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम मुझे तुम्हारे प्यार में पागल कह सकती हो मिसेस खुराना, मुझसे कभी दूर मत जाना वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। आरव काफी इंटेंसिटी से आयु को देख रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसके होठ आयु की तरफ बढ़ रहे थे। तभी आयु मुस्कुराते हुए उससे दूर हो गई। आयु ने नजरें नीची करके कहा, कहा था ना मुझे अपने काम में डिस्टर्ब मत करना वरना अच्छा नहीं होगा, बोलते हुए वो आरव को फिर से बैंडेज बांधने लगी। आरव के बैंडेज करने के बाद आयु उसकी बेयर बॉडी को देखने लगी। आरव ने आयु की नजरों को फॉलो किया तो हंसते हुए कहा, तुम्हें ऐसे छुपकर चेकआउट करने की क्या जरूरत है, मैं तो पूरा का पूरा तुम्हारा ही हूँ, अच्छे से देख सकती हो। आयु आरव से दूर हुई और बात बदलते हुए कहा, फिलहाल के लिए कुछ और जरूरी है, ये सब होता रहेगा, मुझे ये बताओ तुम रोहन से मिलने गए थे, उसने सच एक्सेप्ट किया या नहीं? एक्सेप्ट तो बहुत कुछ किया है लेकिन ये वीडियो उसने वायरल नहीं किया था, वो किसी फलक का नाम ले रहा था, पहले मुझे उस लड़की को और उसके ठिकाने को ढूंढना होगा, आरव ने बताया। आयु फलक और उसके ठिकाने को अच्छे से जानती थी, आखिर उसने वहां 3 महीने बिताए थे। आयु ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, ठीक है फिर, इस बार घर पर तुम सब संभालना, मैं कबीर के साथ फलक के ठिकाने पर जा रही हूँ, घर वालों को कैसे मैनेज करना है ये तुम्हें देखना होगा और मेरे पेरेंट्स की नाराजगी भी तुम्हें दूर करनी है। आयु ने इस बार घर पर दादी की जिम्मेदारी को आरव पर डाला और खुद कबीर के साथ फलक के ठिकाने पर जाने का सोचा। उसे फलक पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था और वो उसे अच्छे से निपट भी सकती थी।